राजयोग मेडिटेशन आध्यात्मिक जीवन मूल्यों एवं सकारात्मक चिंतन के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बहुत ही एक सुंदर दिशा निर्देश किया है, एक सकारात्मक चिंतन और एक संचार लाया है। आपके सरल व्यवहारिक और प्रभावशाली इस शैली से जीवन की जटिल समस्याओं का आपने समाधान उनको एक विशेष एक मार्गदर्शन दी है, उन्हें पहचान दी है। आप पीस ऑफ माइंड, आप सबको पता ही होगा हमारा एक आध्यात्मिक चैनल है पीस ऑफ माइंड चैनल के अत्यंत लोकप्रिय एक हमारा एक एक विषय है समाधान। उस प्रोग्राम के द्वारा आपने करोड़ों दर्शकों तक अपना एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कराया है। इस कार्यक्रम के जरिए आपने पारिवारिक मानसिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को आध्यात्मिक समाधान देकर असंख्य लोगों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। बीके सूरज भाई जी भारत एवं विदेशों में नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन शिविर आध्यात्मिक व्याख्यान एवं व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम का संचालन मार्गदर्शन एवं प्रसारण करते आए हैं। उनके प्रेरणादायी विचार और सहज आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मानित आध्यात्मिक मतलब इनसे अवार्ड से और आध्यात्मिक गुरु एवं जीवन प्रेरक के रूप में स्थापित किया है। उनका संपूर्ण जीवन आत्मिक जागृति मानव सेवा एवं विश्व शांति के संदेश के लिए समर्पित है। अतः मैं भाई जी से अनुरोध करता हूं कि निवेदन करता हूं कि आप आज के इस विशेष सत्र में जिसका विषय है परंपरागत संस्कृति और आधुनिकता के बीच के अंतर इस विषय पर प्रकाश डालें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय राजयोगी बीके सूरज भाई जी।
ओम शांति। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर? बहुत अच्छा। कितना अच्छा बहनों को, बहनें तो फ्री हो गई ना घरों से भी, तो और अच्छा लगता होगा ना। भोजन भी अच्छा लग रहा है। इस संसार को जिस चीज की आजकल जरूरत है, क्या है वो पता है? आज आत्मदर्शन भी करेंगे, यानी अपने को देखेंगे, कुछ चिंतन भी करेंगे। संसार में बहुत ज्यादा प्रगति हो गई है, हमारे भारत देश में तो प्रगति होती ही आई है तेजी से हर फील्ड में, परंतु एक चीज में गिरावट भी आ गई है। कौन सी है वो आपको बताना है अब है? नैतिक मूल्यों में। और बोलो, नैतिक मूल्य में तो सब आ गए, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स बता दें, किस में गिरावट आई है? पारिवारिक संबंधों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। इसके अलावा मन के विचारों में, उससे शांति अशांति में बदल गई। जो प्यार होता था, अब आप आगे सब जानते हैं कहां रह गया है वो। मैं आप सबको याद दिलाऊं, ये भारत बहुत महान देश रहा है, इससे महान संसार में कोई नहीं था। वैसे एक हंसी की बात भी सुना दूं, ट्रकों के पीछे कोई लिखा रहता है ना, हम कार से जा रहे थे अहमदाबाद, तो हमारे आगे जो ट्रक चल रहा था, भीड़ थी तो हमें उसके पीछे पीछे थोड़ी देर चलना पड़ा। लिखा था 99% लोग बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हम हंसते ही गए, महान तो है भारत, और था, बहुत महान था। देखो आज भारत में एक चीज की बड़ी चर्चा होती है, सनातन धर्म होती है ना, लेकिन क्या लोगों को पता है ये सनातन धर्म क्या था, क्या है? अनेक सनातनी ड्रिंकिंग भी करते हैं और दूसरा भी, वो तो आप समझ ही गए क्या क्या। हमारा ये देश आदि सनातन देवी देवता धर्म से भरपूर था। इसका पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहां मनुष्य देवता था, हम सब देवता थे। आप यहां अपने को झांक कर देखें तो आप पाएंगे सबके अंदर देवत्व भरा हुआ है। समझते हैं ना देवत्व, देव संस्कार। जरा सी गलती कर दें मन खाने लगता है, गड़बड़ हुई है। उस देवत्व को हमें जगाना है कि भारत देवताओं की जन्मभूमि, भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है, इसलिए ये बहुत महान है। चरित्र अभी तक भी भारत की ब्यूटी है। ठीक है, बहुत कुछ खेल बिगड़ चुका है, वो आप सब सुनते रहते हैं, मेरे से ज्यादा, मैं तो कम सुनता हूं। क्या क्या संसार में हो रहा है आजकल, तो हमें सबसे पहले, मैं आपको एक विचार दे रहा हूं, अपने संकल्पों को बदलना है, हमारी कल्चर बदल जाएगी। ये एक बहुत सुंदर बात सभी अपने साथ ले जाएं। विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। ठीक बात है या नहीं? मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात सुना रहा हूं, मोटा सा उदाहरण। हमारे पास कैंसर के डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन बहुत आते हैं। एक व्यक्ति है, कुमार है, बैचलर, हमारा फ्रेंड है, बहुत प्रसिद्ध आजकल वो अपने एरिया में कैंसर स्पेशलिस्ट है। मैंने पूछा, कोई हम मन की बात ज्यादा करते हैं, तो मैंने पूछा अपने पेशेंट का कोई अनुभव सुनाओ, तो कहा गांव के लोग जब कैंसर से पीड़ित आते हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जितने पढ़े लिखे आते हैं ठीक होते ही नहीं। अब बताओ कारण, कहीं कहीं ज्यादा नॉलेज मनुष्य को अशांत भी करती है। आपके बेड के नीचे सांप सोया हो, आपको पता नहीं, आप भी रात भर सो गए और सवेरे उठ के देख लिया सांप है तो घबरा गए, वो शायद रात सोया था, पता नहीं था उसका। ये हमारे यहाँ घटना होती रहती है, यहाँ सांप बहुत होते थे, अभी थोड़े कम हुए हैं। मेरी खाट के नीचे भी शायद रात सोया रहा, मुझे पता ही नहीं, सवेरे 4 बजे कुछ देखा मैंने, अरे तो सांप है। अब वो भी इतनी गहरी नींद सो गया था, डंडे से भी उसको इधर किया तो वहां भी सो गया। उसको बाहर निकालना ही मुश्किल हो गया। गांव के लोगों को ये विचार रहता है, उनको पता नहीं कैंसर कोई सीरियस बीमारी है, उनको लगता है बुखार जैसे आता है चला जाता है, कैंसर भी आया है चला जाएगा, ज्यादा नहीं सोचते। पढ़ा लिखा अगर किसी डॉक्टर को कैंसर हो जाए तो वो तो मरा, उसको सब पता है क्या क्या हो रहा अंदर, क्या क्या होगा। तो सोच बदलने से जीवन बदलता है, संसार हमारा बदलता है, हमारे परिवार बदलते हैं। हमारी कल्चर देव कल्चर थी, बहुत महान कल्चर थी, सतयुग में थी वो, त्रेता में थी। लेकिन मैं अभी की आपको बात बताऊं, दो इतिहास के बहुत हीरो एक्टर रहे हैं, आपने उनका नाम सुना है, एक महाराणा प्रताप, एक छत्रपति शिवाजी, सुना है ना। महाराणा प्रताप जब महाराणा थे तो अमर सिंह उनका जो लड़का था मुगल सेना को हरा के उनकी बेगमों को पकड़ के ले आया। महाराणा प्रताप ने देखा, अमर सिंह ने सोचा था कि महाराणा जी बहुत खुश होंगे, का बिल्कुल नहीं, ससम्मान अभी वापिस उनके खेमे में छोड़ कर आए। यह भारत की कल्चर। शिवाजी का एक सेनापति सेना को हरा कर एक बेगम को, ले आया। शिवाजी ने देखा, पहले तो कहा, बहन मुंह खोलो। वो लज्जित हो रही थी, भयभीत थी। खोला मुंह, कहा, मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। डरो नहीं, आप अपने घर में आई हो। और उस सेनापतियों का अभी तुरंत, आपने पहली बार ये गलत काम किया, अपराध किया, आपको क्षमा दान देता हूं, लेकिन आगे से नहीं होना चाहिए। और उसकी बहुत प्रशंसा की बेगम की, और उसको ससम्मान छोड़ कर आए। ये भारत की महान चरित्र की कहानियां हैं, एक नहीं बहुत हैं, जहां लोग धोखा नहीं देते थे, जहां युद्ध में अगर सेनाएं भागने लगी तो उन पर वार नहीं करते थे, हालांकि इससे नुकसान भी हुए। शरण में कोई आ गया, उसकी रक्षा करते थे। मुझे याद है, हम बहुत छोटे थे, गांव में हमारा घर किनारे पर था, राहगीर पैदल चला करते थे। उन दिनों या घोड़ों पे चलते थे या पैदल। तो दोपहर हो गए तो जो गांव आ गया वहां अंदर पहुंच गए। तो हमारा घर किनारे पर था, हमारे घर आते थे, काम था उनको बिस्तर लगा के देना, छाया में सुलाना, शरबत पिलाना, और अगर भूख लगी तो भोजन खिलाना। दूध बिकता ही नहीं था हमारे गांव में। पहली बार जब दूध लेने वाला, दूधिया कहते, आया तो सभी लोग छुप के देख रहे थे कि कौन दूध बेच रहा है। ये महान कल्चर हमने देखी, ये बात अब से 70 साल पहले की है। तो बहुत महान कल्चर में बढ़े पले हम सब भारतवासी हैं। गिरावट हुई है, वो तो सृष्टि का जो क्रम है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आता है, तो उसमें गिरावट होती है। इसमें किसी का कोई दोष भी नहीं है। देखो, एजुकेशन बढ़ी पर डिवोर्स के केस बढ़ गए। पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां कोई भी झुकने को तैयार नहीं। कौन छोटा बने, कोई तैयार नहीं। एजुकेशन बढ़ी, मेरे पास पीएचडी करने वाले बहुत आते हैं। अभी भी एक बहन आई कल परसों, मैं बहुत देखता हूं कि जो पीएचडी करते हैं, जानते हैं ना पीएचडी, रिसर्च करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की, उनको पीएचडी का अर्थ है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, वो मिलती है डिग्री। मैं देखता हूं मानसिक इफेक्ट उन पे बहुत आता है, बहुत आ जाता है। तो हमें ध्यान देना है, हमें अपने में कुछ चेंज लानी है, चाहता कि फिर से भारत अपनी देव सभ्यता में पहुंच जाए। ये देवताओं की जन्मभूमि है, फिर से बनने वाली है। सचमुच भारत बहुत महान है। और आपको ये खुशखबरी सुना दे, जहां आप आए हैं, ये स्थान आप महसूस कर रहे हो कि मुझे कहने की बात नहीं, स्पिरिचुअल पावर से, सुंदर वाइब्रेशन से भरपूर है। हमें तो लोग ऐसा ऐसा सुनाते हैं कि यहाँ आए थे सवेरे टेंशन फुल, मन परेशान, शाम तक सब शांत हो गया, पता नहीं कहां चला गया। वाइब्रेशंस का इफेक्ट, आप अपने अपने घरों में भी ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे ताकि आपके घर में सब कुछ सुंदर चले, सुख शांति रहे, प्यार रहे, निस्वार्थ भावना रहे, छोटी छोटी बातों में संघर्ष ना हो, संस्कारों के टकराव ना हो। और जो आजकल एक बहुत बड़ी बात चलती है बहुत परिवारों में, जब संपत्ति का बंटवारा होता है, बस आगे मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या क्या होता है, कोर्ट केस चलते रहते हैं, डिवोर्स के केसेस से, करोड़ों केसेस से कोर्ट की फाइलें भरी हुई हैं। तो हमें इस सब को चेंज करना है, अपने से शुरुआत करनी है, ताकि हमारी अपनी कल्चर डिवाइन हो जाए, देवत्व से भरपूर हो जाए। हम कलयुग में रहते भी अपनी जो मूल चीजें हैं उनको जीवन में ले आए, उनका जीवन में अनुभव करें। मैं बताऊं आपको भारत कितना महान देश है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमें वो चीजें पता नहीं चलती। और जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है, जैसे मैं बहुत जाता हूं, तो वहाँ की सफाई या वहाँ की ईमानदारी या वहाँ की रोड के नियम, कारों के चलने के तरीके, सब डिसिप्लिन, उसको देख के लगता है हमारा भारत देश तो बेकार है। लेकिन बेकार नहीं है, वहाँ के वाइब्रेशंस और यहाँ के वाइब्रेशंस में बहुत अंतर है। आप सबको पता है मोदी जी ने सफाई अभियान की बात की थी, क्या कमेंट्स करते थे भारत के बुद्धिमान लोग, अरे भारत में कोई वो केला खा के छिलका बाहर न फेंके ये हो ही नहीं सकता, भारत में मूंगफली खा के लोग छिलके बाहर ही फेंक देंगे, यहाँ सफाई कहाँ होगी, गांव के लोग सफाई कहाँ करेंगे यहाँ। लेकिन हो गया या नहीं, बहुत जगह हो गया, हम लोग भी जाते हैं, कोई भी कार वाला कुछ भी कागज का पीस भी बाहर नहीं फेंकता। तो भारत के वालों के अंदर ये सब मान्यताएं हैं, उनको जगाना है बस हम सभी को। तो सभी यहां आकर अपने पे दृष्टि डालेंगे, आध्यात्म की शक्ति की इस संसार को बहुत जरूरत है। मैं आपको एक बहुत गुह्य बहुत बड़ी सीक्रेट की सुंदर बात सुना देता हूं, जिसको समझकर आप सभी को उस चीज को ठीक करना है, बच्चों से ठीक कराना है, परिवारों से ठीक कराना है, जो मैं पीएचडी वालों की बात की ना। मनुष्य का मन इस समय बहुत बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि सतयुग में जब हम इस संसार में आए थे हम परफेक्ट थे, हमारा मन बहुत शक्तिशाली था, हमारी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ थी। देखो आजकल बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है लोगों की, लेकिन सुबुद्धि बहुत कम है लोगों के पास, श्रेष्ठ बुद्धि बहुत कम है लोगों के पास। हमने कल परसों का उदाहरण सुना होगा ना, एक लड़की ने क्या कर दिया, फिर से सुना है क्या, हो सकता है अभी यात्रा में रहे हो, जैसे पहले केस हुआ था ना, वो कहीं दार्जिलिंग की तरफ जाके उसको डाल दिया था अपने लवर के उस चक्कर में, परसों भी ऐसा ही हुआ, जिसकी शादी में 17 करोड़ खर्च होने थे उदयपुर में, यही अभी अपने पति को लेकर जिससे शादी होने वाली थी बाहर गई थी, और अब में से जो महाराष्ट्र से आए हो, महाबलेश्वर है पूना के थोड़ा आगे को, बहुत गहरी खाई है वहां, 400 फुट नीचे से देखते हैं लोग, देखने जाते हैं। उसका लवर पीछे था, उसको बुला लिया और सेल्फी लेने के चक्कर में उसको धक्का दे दिया और 400 फीट नीचे जाके तुरंत मृत्यु, वो भी अपने बाप माँ बाप का अकेला लड़का था। अभी देखो दो परिवार, वो दोनों पकड़े गए, आजकल तो पुलिस के पास बहुत सारे तरीके हैं, दोनों को जेल में या तो फांसी लगेगी या पूरा जीवन जेल होगी। तो ये सब मनुष्य के कमजोर मन की पहचान है, लक्षण है। एक हमारा देश था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, शादी हो गई पूरा जीवन साथ रहना है, बुजुर्ग माता बैठी है बैज लगा के, थी या नहीं, पूरा साथ रहना है। हमारा डेलीगेशन जब पहली बार चाइना में गया तो जगदीश भाई थे, जानते हैं जो यहाँ ज्ञान वाले हैं, बताया कि वहां लोग चुपचाप बात करते रहते थे कि भारत की लेडीज मोटी हो जाती हैं लेकिन पति को नहीं छोड़ती, न पति छोड़ता, तब तो डिवोर्स की चर्चा ही नहीं थी हमारे देश में, विदेश में तो एक एक कम से कम 3-3 बार छोड़ा शादी की, छोड़ा शादी की, इसलिए अकेले रह जाते हैं कई लोग अंत तक। फिर गवर्नमेंट को जैसे यहाँ बूढ़े घर बनाते हैं ना, ओल्ड एज होम वहां बनाने पड़ते हैं बहुत सारे। तो हमें अपने देश की कल्चर को पुनः महान बनाना है, और आपको ये खुशखबरी यहां मिल रही होगी, इस समय स्वयं परमात्मा भारत को स्वर्ग बनाने का अपना महान कार्य कर रहे हैं। आपने से बहुत सुनते होंगे भारत में कल की अवतार की चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग आएंगे, घोड़े पे सवार होंगे, तलवार हाथ में होंगी, दुष्टों का संहार होगा। अब आप सोचो दस बीस दुष्टों का संहार करके तलवार से क्या भारत स्वर्ग बन सकता है? क्या तलवारों का जमाना रह गया? तलवारों का जमाना रह गया? ये ज्ञान देने की बात है। भगवान स्वयं इस सृष्टि पर ज्ञान देकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, आएगा नहीं, आकर कार्य कर रहे हैं। जब ये कल के अवतार की बात हुई ना, अभी तो लोगों ने वो दिखाना ही बंद कर दिया। कई लोग कहने लगे मैं ही कल की अवतार हूं, कई बड़े सन्यासी कहने लगे मैं ही कल की अवतार हूं, तो कंफ्यूजन पैदा होने लगा। कल की अवतार कोई घोड़े पर नहीं आएगा, भगवान स्वयं इस समय इस सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। आप सबको याद दिला दूं, जो आप यहां बैठे हैं, हम सब सतयुग में देवी देवता थे। इस सत्य को पहचानने की जरूरत है हम भारतवासियों को। हम सब देवी देवता थे। भारत में कितने करोड़ देवी देवताओं का गायन है? 33। तो मनुष्य ही थे ना, यहां मनुष्य के अंदर वो देवत्व था। देवता ऐसे नहीं ऊपर रहते थे, भारत का गायन है। यहां 33 करोड़ देवी देवता थे, वो हम सभी थे। यहां आपको अपने अंदर झांक कर हमारे अंदर जो सद्गुण है, जो प्योरिटी है, जो बहुत दिव्य संस्कार हैं, जो सुख देने की भावना है, जो निर्मल प्रेम अंदर में समाया हुआ है, उसको जगाना है। वो दब गया है, ये है अपनी मूल परंपरा को पुनः स्थापित करना, अपनी मूल महान कल्चर को पुनः जागृत करना, इस संसार में स्थापित करना। मैं आपको खुशखबरी सुना रहा था, सुन लें आप। संसार तो विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या नहीं? भाई लोग क्या समझते हैं, बोलो। बढ़ रहा है। ये विश्व युद्ध ही तो है, उसकी बिगिनिंग इसी तरह होती है। आज छोटे युद्ध, फिर ये दो चार इनके साथ मिलेंगे, संसार दो भागों में बढ़ता जा रहा है और यही विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन भारत इन सब से मुक्त रहेगा। आज आपको पता चल जाए और आप देखेंगे भारत उन दोनों गुटों में किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगा, अर्थात विश्व युद्ध से बाहर रहेगा। और ये भारत लाइट हाउस बन जाएगा, संसार को सत्य ज्ञान यहीं से प्राप्त होगा। ये पीस हाउस बन जाएगा, संसार में शांति की तरंगें यहीं से फैलेंगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यहीं पर हमारी क्लास चल रही थी, सवेरे चलती है। रशिया की 21 बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया था। आप जानते होंगे समर्पित, जैसे हमारी बहनें हैं जो आपको लेकर आई हैं, उन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया है, समर्पित किया है ईश्वरीय कार्यों के लिए, पवित्रता की प्रतिज्ञा करके शुद्ध जीवन, शुद्ध खान पान, त्याग भरा जीवन अपनाया है। तो रशिया की रशियन बहनों ने 21 ने जीवन समर्पित किया था, उसमें 9 यहां पर आई। तो एक को कहा आप अपना अनुभव सुनाओ। कहा मैं अब से पहले 4 बार भारत में आई भगवान को ढूंढने। मैं आगे बैठा था जैसे आप बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा भारत में ही क्यों आई? अमेरिका का नाम बहुत है, ब्रिटेन का नाम बहुत है, लोग घूमने जाते हैं, और बहुत सारे स्विट्जरलैंड को स्वर्ग मानते हैं, वहां क्यों नहीं गई? ये सुनते ही वो सोचने लगी कि क्या पूछ लिया, भारत में ही क्यों आई? उसको भी नहीं पता वो क्यों भारत में आई। विचार करेंगे आप सभी तो सत्य यही है, जिसको संसार में शांति चाहिए वो भारत की ओर देखता है, जिसको सत्य ज्ञान चाहिए वो भारत में आता है, जिसको भगवान की खोज हो वो भी भारत में आता है। हालांकि आजकल भारत वालों की भागदौड़ बाहर की ओर बहुत है, वो भगवान के लिए नहीं, वो तो अपना काम धंधा करने के लिए, धन कमाने के लिए, तो ठीक है, अच्छा है, भारत के लोग भी संपन्न होते जा रहे हैं। तो ये भारत बहुत महान देश था, पुनः महान, सबसे महान, सर्वोच्च तीर्थ ये भारत बनने वाला है। तो मैं आपको कुछ चीजें कह रहा हूं, अब उस पे ध्यान देना। अपने अपने घरों की कल्चर सभी को बदलनी है, अपने अपने घर को मंदिर जैसा बनाना है, सुखों का धाम बनाना है, शांति का धाम बनाना है, प्यार की गंगा बहानी है। बोलो भाई करेंगे या बहनें? बहनों की तरफ देख रहा हूं मैं पहले, आपने तो उत्तर अच्छा दे दिया। बहनें करेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहेंगे। अच्छा, दोनों करेंगे, करना तो दोनों ही है, एक पहिए से तो गाड़ी चलती नहीं कभी। तो अपने में कुछ विशेष परिवर्तन लाना है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं, थोड़ी सुनाऊंगा ताकि आपको याद रहे। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्लास थ्योरिटिकल ना हो, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। पहली चीज, हमारे बोल सुखदाई होने चाहिए। घरों में ये परंपरा सभी शुरू करें, कई घरों में होती हैं, माताओं के बोल बहुत अच्छे होते हैं कहीं कहीं, लेकिन जब खुद परेशान हो जाते हैं तो बोल थोड़े बिगड़ जाते हैं। कोई बच्चा बहुत तंग कर रहा हो तो बोल बिगड़ जाते हैं। आपको ऐसे बोल बोलने हैं कि आपके मुख के वचन सभी सुनना चाहें। ठीक बात है? ऐसे बोल नहीं बोलने हैं जो कोई सुनना ही ना चाहे। भाइयों के लिए एक बात बता दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, कई भाइयों को इतना गुस्सा आता है कि जब वो अपने कामकाज से घर आते हैं ना, तो बच्चे ऐसे छुप जाते हैं जैसे बिल्ली को देखकर चूहे अंदर आ गए पापा। होना क्या चाहिए? बच्चे आपके आने की इंतजार करें, करते हैं, आपके प्यार की कामना रखते हैं। माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए सबसे बड़ी पालना होता है। आप उसे भोजन कम दे दो लेकिन प्यार दे दो, उनका विकास होने लगेगा। तो हमारे बोल बहुत ही सुखदाई, दूसरों का उमंग बढ़ाने वाले, दूसरों के कष्टों को, निराशा को समाप्त करने वाले हों। सभी ध्यान देंगे, माताओं को मैं विशेष कह रहा हूं। एजुकेशन का कंपटीशन है संसार में, पढ़ाई पर कन्याएं विशेष रूप से, बच्चे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा थोड़ी कम बुद्धि वाला है, अब सब तो टोप नहीं करेंगे ना क्लास को, किसी को थोड़ी बुद्धि कम है, तो उसको डांटो डपटो नहीं, उसे रात दिन कोचिंग में, अब यहां जाओ, अब ये पढ़ो, अब होमवर्क करो, इसमें ना लगाओ। आप बुजुर्ग बैठे हैं, जब आप पढ़ते थे कितनी कोचिंग करते थे बाबूजी? थी नहीं। और हम जब पढ़ते थे कोई मतलब ही नहीं था रात को पढ़ने का, घरों में लालटेन होती थी, अब कौन पढ़ेगा लालटेन में। आप सबका काम है अपने बच्चों को उमंग दिलाकर उनकी बुद्धि का विकास करना। सभी बहुत अच्छी तरह जान लें, जितना दूसरों को डांटा जाएगा, खासकर बच्चों को, बुद्धि उतनी ही दबाव में आएगी, डल होगी। इसलिए उमंग दिलाना है। और मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग सुना देता हूं जो हम बहुतों से कराते हैं। जब आप अपने बच्चों को उठाओ सवेरे, चाहे वो 10वीं क्लास में हो जब कोई बच्चा उठेगा उसको कुछ याद नहीं रहता, उसको याद दिलाना, तीन बार बोलो या संकल्प करो मैं बुद्धिमान हूं। रात दिन पढ़ाई करने से अच्छा होता है बुद्धिमान बनाना। अगर बच्चे बुद्धिमान होंगे तो सब कुछ तुरंत याद कर लेंगे। उमंग दिलाकर, अच्छे बोल बोलकर, तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, जरा सी मेहनत करो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अभी 50 आए ना, अगली बार 60% आ जाएंगे। फिर उमंग दिलाओ, अभी 65 लाने हैं। तो देखो बच्चों को उमंग होगी, खुशी बढ़ेगी, दिमाग का प्रेशर हटेगा, एजुकेशन को एंजॉय करेंगे। हमने बहुत अच्छी कुछ प्रैक्टिस कराई, एक सूक्ष्म रिसर्च थी, भाई लोग और सब आप पढ़े लिखे हैं, कोई टीचर हो तो वो भी सीख लें। मान लो कोई बच्चा फिजिक्स में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, अब माँ बाप क्या करेंगे, भाई ट्यूशन पढ़ाओ, कोचिंग कराओ, मेहनत कराओ, रट लो, ये कर लो, वो कर लो, इसे काम नहीं चलता, वो वहां जाके भूल जाएंगे सब कुछ एग्जाम में जाते ही। हमने एक नई चीज शुरू की, एक सुंदर बात हमें कहीं सुनने को मिल गई, एक लाइन सुनने को मिली थी बस, कि म्यूजिक से ब्रेन के कुछ सेंटर, कुछ केंद्र खुल जाते हैं। तो मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी। चलते चलते, बहुत ध्यान से सुनेंगे, टेंशन के कारण आपके घरों में खुशी का माहौल नहीं है, उसके कारण, पढ़ाई के प्रेशर के कारण ब्रेन के कुछ केंद्र बंद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फिजिक्स के लिए एक केंद्र, मैथमेटिक्स के लिए दूसरा केंद्र, म्यूजिक के लिए तीसरा केंद्र, सिंगिंग के लिए अलग केंद्र, लिखने के लिए अलग केंद्र। ब्रेन की जो रचना है बहुत सूक्ष्म है, सारी मेडिकल साइंस मिलकर संसार की ब्रेन को केवल 10-12% ही जान पाई है अब तक। ये हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है डॉक्टर्स की, बड़े बड़ों की इंटरनेशनल, उन्होंने बताया ब्रेन की रचना इतनी सूक्ष्म है। तो हमने इस आधार पर एक टेक्निक शुरू की जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। एक लड़की का उदाहरण दे रहा हूं, उसके नंबर 28 आए 11वीं में, जैसे तैसे उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो उसको कोचिंग कराई गई, तो जो वो टीचर बहन थी वो ज्ञान वाली थी, ब्रह्मा कुमारी, वो हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में आती है। तो हमने ये सिखाया हुआ था कि बच्चों से संकल्प कराओ, आई लव माई स्टडी, मैं अपनी स्टडी को बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, फिजिक्स इज वेरी इजी टू मी, फिजिक्स, या उसकी इंग्लिश थी कमजोर, इंग्लिश इज वेरी इजी टू मी, उसको सिखा दिया, बहुत इजी है इंग्लिश मेरे लिए, आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश को बहुत प्यार करती हूँ, अब मेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे, आई एंजॉय इंग्लिश, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का आनंद लेती हूँ। ये सब उसे रोज करने को कह दिया, उठते ही करो, दिन में भी करो। क्या था उसके संकल्प में, ओह इंग्लिश बहुत कठिन, ये तो मेरे को याद ही नहीं होती, बहुत भारी है, और भी सोचते अंग्रेज चले गए, मुसीबत छोड़ गए हमारे लिए, सोचते हैं ना भारत वाले बहुत ज्यादा। इससे वो जो इंग्लिश का केंद्र था वो बंद होता ही जा रहा था, कर दिया इंग्लिश बहुत ही जाओ, आई विल एंजॉय इंग्लिश, इंग्लिश आई लव इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी इजी, खुलने लगा। आप खुश होंगे जानकर, रिवर्स हो गया, 82 आए 12वीं में। हम फिजिक्स वालों से कराते हैं, मैथमेटिक्स वालों से कराते हैं, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर उसमें कम नंबर रह जाए तो परसेंटेज डाउन हो जाएगी, और उसमें हाई आ जाए, 90-95 आते हैं बच्चों के, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम घरों में खुशी का, शांति का, प्यार का माहौल बनाएंगे, प्रेशर का नहीं। अगर कहीं स्त्री पुरुष का आपस में मन मुटाव रहता है, थोड़ा बहुत क्रोध रहता है, उसको आप ठीक करके जाएंगे यहाँ, क्योंकि माँ बाप को अगर बच्चे लड़ता हुआ देखते हैं तो समझ लो उनके भविष्य के जीवन पर, उनके कैरियर पर, उनकी पर्सनालिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी अपने घर को खुशियों से भरेंगे, बोलो भरेंगे, भरेंगे ना। और इसके लिए एक सुंदर बात ले जाना, बातों को जल्दी खत्म करना, छोटी बात को डिबेट में न बदलना, छोटी बातों को परेशानियों का कारण न बना देना। एक छोटे से उदाहरण से समझ लेंगे आप। अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका के एक भाई का मुझे फोन आया, उसने ज्ञान लिया है, कहा मेरी पत्नी मेरे से बहुत नाराज रहती है, कहती है सब घूमने जाते हैं तुम मुझे कहीं भी नहीं ले जाते, ये है वो है। मैंने कहा तो ले जाया करो ना भाई, आप भी साल में 2 बार घुमा दिया करो कहीं भी ले जाके, अमेरिका में बहुत सुंदर चीजें हैं। कहा क्या करूं, हम अगर 5 मिनट भी आपस में इकट्ठे बैठें तो लड़ाई करके ही उठते हैं 5 मिनट में भी, तो कहां ले जाऊं उसे, अभी 3 दिन ले जाऊंगा रहूंगा, मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अपने को हल्का करें, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना, और इसमें बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी है, अपनी बात को महत्व न देकर प्यार भरे संबंधों को महत्व देना। पसंद है प्यार भरे नाते, बहुत बड़ी गिफ्ट है। बातें बहुत छोटी होती हैं। आप देख लो जिन बातों पर घरों में झगड़े होते हैं वो बड़ी होती हैं छोटी, बहुत छोटी। बहन जी ने सब्जी में नमक कम रख दिया था, भाई जी को गुस्सा आया, तुम रोज नमक कम रखती हो, खाना टेस्टी नहीं बनाती। बहन जी को और गुस्सा आया, तुम रोज ये नुक्स निकालते रहते हो, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं बनाऊंगी। झगड़ा शुरू, बात कुछ भी नहीं थी, नमक कम था जरा सा डाल लो भाई, कह दो भाई कल से ध्यान रखना, बात खत्म। बातों को जल्दी समाप्त करना। आज की इस क्लास से सभी ये फॉर्मूला सीख कर जाएं। बोलो पसंद है, सोच लो बहनों को पसंद है। जितना जल्दी बातों को खत्म करेंगे आपके घर में खुशी शांति प्यार का वातावरण रहेगा, संबंधों में कड़वाहट नहीं होगी। और जो बातों को बढ़ा देते हैं, छोटी बात तूफान बन जाती है, बाद में समझ में आता है बात तो कुछ भी नहीं थी, बिना मतलब घर में अशांति कर ली। याद रखेंगे आपके घर के वाइब्रेशंस, बहनें ज्यादा ध्यान दें, जो आप भोजन बनाती हैं उसमें समा जाते हैं, आपके घर में जो पानी रखा है पीने का वो उनको ग्रहण कर लेता है। सबको पता हो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है पानी, जो मनुष्य के संकल्पों को तुरंत ले रहा है अपने अंदर, फिर ये भोजन प्रकृति, फल फूल सब्जी आटा दाल रोटी सब। इसलिए अगर आपके घर में जरा भी मनमुटाव का वातावरण है तो आपका पानी अशांति ग्रहण कर रहा है, और जो उसको पिएगा उसको वो अशांति महसूस होगी, टेंशन आएगी। बहुत ध्यान देंगी, बहनों की बहुत जिम्मेदारी है अपने घर को खुशहाली से भर देना। बैठ जाओ, खुशहाली से भर देना। और एक ही धारणा याद रखेंगे, बड़ी बात न बनाना, छोटी को बड़ा न करना, और बातों को जल्दी से खत्म कर देना। फिर पूछता हूं बहनों को पसंद है, सबको पसंद है, कर लेंगे ना, तो आपकी यहां की यात्रा सफल हो जाएगी। और फिर से वो पहली बात सुना देता हूं आपको, सब कुछ बदलने के लिए अपने विचारों को बदल दो। लास्ट में बहुत आपके काम की बात मैं आपको कह रहा हूँ, साथ ले जाएंगे आप। जब हम आँख खोलते हैं रोज सवेरे, तो हमारे पहले 10 मिनट रोज गोल्डन पीरियड है, सुनहरा समय, भाग्य निर्माण का समय, और उनके लिए बहुत सुंदर समय जो जल्दी उठते हैं, उनके लिए हीरे समान समय जो 4 बजे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ऊपर की दैवी शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं, अगर हम उनसे जुड़ जाएं तो। अब ये राजयोग आपको परमपिता से जोड़ने का ही तो तरीका बताता है, तो बहुत कुछ मिलेगा 10 मिनट, उसमें से पहले 5 मिनट और पहले 3 मिनट बहुत काम के। इसलिए क्यों है काम के? क्योंकि मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड, उसका अंतर मन जगा रहता है। जो आप सोचेंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वो आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत ध्यान दें, बच्चे बहुत आ गए हैं, उठते ही मोबाइल नहीं देखना है 15 मिनट के बाद। मनुष्य को आदत है, उठी उठे ठकाठक मोबाइल पे, क्या क्या नाम है पता नहीं, फेसबुक पे क्या आया है, इंस्टाग्राम पे क्या आया है, व्हाट्सएप पे क्या आया है आज। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं। सबको कल सवेरे से ही एक प्रैक्टिस चालू कर देनी है। सुंदर संकल्प करेंगे उठते ही, और एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, जो आप जीवन में चाहते हैं उठते ही संकल्प करना। अगर आपने पहले मिनट में ही कर लिया तो चमत्कारिक परिणाम आएंगे, क्योंकि अंतर मन जगा है, वो सब ग्रहण कर लेगा। तो बहुत सुंदर संकल्प करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं, ये नहीं मेरा तो भाग्य ही खराब है, ये नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, सुख बढ़ेगा, भाग्य जगेगा, मैं बहुत धनवान हूं, धन बढ़ेगा, द्वार खुलेंगे आपके लिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता का मार्ग खुलेगा, मेरा जीवन विघ्नों से समस्याओं से मुक्त है, मुक्त होने लगेगा, भगवान मेरा साथी है, साथ मिलने लगेगा। और आखिरी संकल्प रोज करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप उसी दिन इस संकल्प का इफेक्ट देखेंगे, 3 बार कम से कम, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पता नहीं आज ये ना हो जाए, कोई समस्या होती है ना, कोर्ट केस होते हैं, आज निर्णय आना है, पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा। मैंने बहुतों से प्रैक्टिस कराई, संकल्प कराए, नहीं, आज कोर्ट का निर्णय मेरे फेवर में आएगा, आज मेरा दिन बहुत सुंदर होगा, आज मेरा दिन खुशियां लेकर आ रहा है, आज सफलता मेरे चरणों में चरण चूमेगी, फेवर में आ गया निर्णय। तो जो आप संकल्प सवेरे करेंगे वही पाएंगे। स्टूडेंट्स को भी सिखा दें अपने घरों में, और सब करें, जो चाहते हैं वे संकल्प उठते ही, 4 बजे नहीं उठते तो सूर्योदय से पहले, 8 बजे उठने वालों को, 9 बजे उठने वालों को ये नहीं प्राप्त होगा, 6 बजे से पहले कम से कम, आजकल 5 बजे तक सूर्योदय जल्दी हो जाता है। तो आप सब ये करेंगे, आपका अंदर का देवत्व जगेगा, प्योरिटी बढ़ेगी, विचारों में शुद्धि आएगी, और जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर नजर आएगी, जीवन जीने का आनंद आएगा, और भारत इस तरह फिर से देव सभ्यता से भरपूर हो जाएगा। ओम चंद। चले अभी कनेक्ट हो जाए कुछ देर के लिए ऊपर, जरा लाल लाइट कर दो भाई। फील करें ऊपर शिव बाबा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी नीचे मुझे आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक हाथ से हम भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। आपने हमें बहुत सारे ज्ञान के अनमोल मोतियों से भरपूर किया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो सोच बदले, इससे हमारा जीवन और संसार बदलेगा। भारतीय चरित्र को अनेक के अनेक उदाहरण देकर हमारे खोए हुए संसार जो समान है उसको जगाया। साथ ही साथ हम ही उस सत्युग के देवी देवता धर्म से हैं, ये स्मृति दिलाई। भारत देश की महिमा कर हमें हमारी महानता की स्मृति दिलाई और अनेक समानों के बहुत ही सुंदर अभ्यास करा के हमें प्रेरणाएं दी। तो हम सभी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।